अब इसको अभी दूसरी तरफ भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए अगर आप थोड़ा सा इंशाल्लाह जब एडवांस पे जब तफसीर कोर्स में इस आयत को पढ़ेंगे ना, तो फिर ये लिखिएगा, अब लिखे नहीं सिर्फ सुन लें, ली तस्कुनु, तस्कुनु में जो ता है ना ये मुअन्नस की होती है औरत, और इलई हा में जो हा है ना ये भी मुअन्नस है, हु नहीं है। ये दो तीन चीज़ें इस एक आयत से पता चलती हैं कि सुकून बख्शना बीवी के ज़िम्मे है मर्द से ज़्यादा, यानी औरत को कहा गया कि घर का सुकून तुम दोगी, हालांकि बात दोनों के लिए है, बात समझ गए। तो औरत सुकून बख्शने वाली मशीन, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मर्द नहीं है ऐसा तो सुकून फिर भी नहीं होगा, तो मर्द कैसे सुकून का जरिया घर को बनाए, सीधी सी बात है। मर्द के दो काम है, अर्रिजालु कवामून अलन निसा बीमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद और व बीमा अनफकू मिन अमवालिहिम, सूरह निसा की आयतें खोल लीजिए, दो काम है मर्द के घर पर सुकून होगा। नंबर एक, मर्द मजबूत हो, स्ट्रांग हो, डिसीजन पावर मर्द के हाथ में हो, फैसले ठीक करे, यानी प्रोटेक्शन दे बीवी को, यानी कि घर में चोर आ जाए तो वो खुद घुस जाए और बीवी को आगे कर दे, और चूहा देकर टेबल पर चढ़ जाए के बेगम आप इसको मारिए, ये मर्द नहीं होते। मर्द स्ट्रांग होने चाहिए, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो वो लगा रहा है, बेगम बैठी है आराम से, ग्रोसरी बीवी नहीं कर रही मर्द कर रहा है, और वो सारा सामान ला के घर में वो उठा उठा के रख रहे, ये मर्द की बातें हैं। और दूसरी बात है कि माल खर्च करें, हज़ारों कमाता है तो हज़ारों देगा, लाखों कमाता है, यानी घर की टेक केयर औरत के ज़िम्मे नहीं है। जो मर्द ये दो काम अपने आसन दर्जे पे कर रहा है, अखलाक के साथ रहता है, उस घर में सुकून होगा। और बीवी को तो अल्लाह ने एक लंबी लिस्ट दी है कुरान में बहुत जगह, एक औरत होने के नाते अलकानितातुन सालिहातुन, यानी औरत में तो बहुत चीज़ें चाहिए, लेकिन याद रखिए कि घर की गाड़ी अकेले नहीं चलती, आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घरों में सुकून दें। मैं पे अभी ये आयतें पूरी करके आपको एक शेयरिंग सुनाऊंगी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बातों का खुलासा है कि जो हमने इस पे एक पूरा कोर्स किया हुआ है, निकाह ए टू जी, मैरिड लाइफ ए टू जी, किताबों की किताबें इस मौजू पे अल्लाह के हुक्म से मैंने पढ़ा दी हुई हैं, और सबसे बढ़ के तो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी की किताब कहती हूँ कि देख लो आके। अगर दीनदारों के घर नहीं बसते तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे मर्दों से पूछ लीजिए जो दीन की तरफ हैं, अगर नेक बीवियाँ या दीन का काम करने वाली अपने शौहरों का ख्याल नहीं रखती तो जाइए आप हमारे शौहरों से पूछ लें जो जो दीन का काम कर रही हैं कि सुनाओ ये कैसी हैं। यानी बस दफ़ा दीन के नाम के साथ बहुत चिड़ लोग करते हैं, चूँकि बढ़ती बढ़ाती रहती है रोटी नहीं पकाती, भाई क्यों, चूँकि ये तो घर साफ नहीं मिलता, चूँकि गलत बात है। पहले बातें अंदर दिलों में कई वो कहने हैं दराड़ें पड़ी होती हैं, दीन तो बेचारा वैसे ही बदनाम है, सौतेले बच्चे की तरह हर नाम उस पर लगा देते हैं हम लोग। मैं नहीं मानती एक अक्लमंद औरत, एक अच्छी बीवी, शौहर से प्यार करने वाली, उसका ख्याल रखने वाली, उसको सुकून देने वाली, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाली बीवी, वल्लाह ही उसका मियाँ खुद नमाज ना भी पढ़े, खुद दीनदार ना हो, लेकिन वो उसको कभी मना नहीं करेगा। हम करते क्या हैं कि वो 3 घंटे की दीन की क्लास बाकी 21 घंटे के ऊपर भारी डालते हैं, इसलिए हम दीन को बातें कराते हैं। तो मैं तो सबको, जिसको भी हमारे अपने साथी स्टूडेंट्स, आप सब भी अंसारुल्लाह, सबको कहती हूँ अगर आपने हमारे साथ बैठ के दीन का काम करना है, जाइए पहले अपने घर वालों से अपने ताल्लुकात दुरुस्त करें, आपके शौहर आपकी तारीफ़ करें, आपके शौहर मुतमईन है, फिर आप आइए हमारे पास, वरना तो आपके घर की हर लड़ाई नूरुल कुरान के दाम पे लगनी है, ये नूरुल कुरान में जो पढ़ाती हैं उनके मियाँ ने ये कहा है, तो भाई नूरुल कुरान इतना मजबूत नहीं है, वो बड़ा कमज़ोर सा इदारा है, उसको तो फिक्र एक लगी हुई है कि घरों में दीन आ जाए, दीन को ना बातें कराएं। जैसे शादीशुदा ज़िंदगी में आप देखिए कि आम लड़कियां बुरा काम करें ना तो माँ बदनाम होती है, माँ ने ये सिखाया, कोई माँ नहीं कहती कि जाके बदतमीज़ी करना, लेकिन आप देखें एक दफ़ा की बच्ची की बदतमीज़ी को कोई नहीं सोचेगा, दो तीन दफ़ा करेगी तो कहेंगे सर इसकी माँ को तो देखें वो कैसी है, ये अपनी सास के साथ कैसी थी, ये अपने मियाँ के साथ कैसी है, बस वो माँ बदनाम या माँ की तारीफ, बस बच्चियाँ वैसी बड़ी अच्छी होती हैं, माँ कोई मेहनत नहीं करती लेकिन सारी बच्ची की तारीफ माँ के नाम पे जाती है। इसी तरह आप दीन के साथ जुड़ के जाएं दुनिया में कहीं, सारे ताने पढ़ने हैं तो दीन के नाम पे पढ़ने, किसने पढ़ाया है, ये कहाँ से पढ़ के आई हैं, तो ये देखो पढ़ाया क्या उन्होंने, खोल के पढ़ लो, खुद सुन लो, देख लो क्या पढ़ाती है, यकीन कीजिए मैं यहाँ अगर बैठी हूँ इस वक्त कितने सुकून से बात कर रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने वर्क से पहले इधर आके बैठ जाती हूँ, आपको देखती रहती हूँ आप क्या कर रहे हैं, मैं ना भी आऊँ, मैं वक्त पे आऊँ, मैं उठ के चली जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं, बट मैं ये क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से अपने घर से मुतमईन हूँ, और यहाँ बैठ के शौहर की गालियाँ याद आती हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, और सास के ताने याद आते हो तो मेरी आवाज़ में इतनी सुकून नहीं हो सकता। पहले अपने घरों को ठीक करें, आपने दीन सीखना है ना, पहले घर वालों से मामला ठीक करें। नहीं आ रहा समझ आता तो इंशाल्लाह आप किताब शुरू करेंगे, मैं मुशाहदे की बुनियाद पे और कह लीजिए तजुर्बे की बुनियाद पे कहती हूँ, जब औरतें कुरान की तरफ आती हैं ना, जैसे अब आप आई हैं, ये तो एक शॉर्ट कोर्स है, सबसे पहला असर जो आपके ऊपर आएगा ना, आपके अपने घर वालों से ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपको अपनी पिछली ज़िंदगी में अपनी हालतें हरकतें कई नज़र आएंगी। ओहो, मैं तो सारी उम्र उस बंदे को बुरा कहती रही, करामी तो मेरी थी, और ये सास अम्मा का जो गुस्सा आता था वो गलत नहीं था, बेवकूफ़ियाँ मैंने भी बड़ी की हैं, ये हमारे पास रिटन गवाहियाँ मौजूद हैं, जुबानी भी, बोली हुई, लिखी हुई, स्टूडेंट से, उनके घर वाले हमें मैसेजेस करते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। और हमारी अपनी क्लासेस में सास बहू भी आती हैं, कई मुल्कों की कहानियां सासों की मशहूर है, वो वहां सबके बीच में 10 पारों के बाद ही कहती हैं, वल्लाह ही हम बता सकते हैं कि अब जो हमें प्यार है एक दूसरे से वो नहीं, शर्त ये कि सास और बहू दोनों आए, एक घर बैठी है तो फिर लड़ाई पक्की, आ गई अब पढ़ने लग गई, हमने को पढ़ने के लिए थोड़ी लाए थे तुझे, फिर झगड़ा होगा। लेकिन ऐसी भी सासें हैं, मुझे एक सास तो इतनी प्यारी लगती है, हमारी एक स्टूडेंट की है, बहू स्टूडेंट है, वो जब खड़ी होकर बात करती है तो बस आंसू निकलते हैं उसके इस बात पे कि मैं आज जो हूँ जहाँ हूँ ये मेरी सास का काम है। क्यों? सास कहती है तू जा, बच्चे मैं संभालती हूँ, जाने तक कहती, जैसे मैं स्कूल से आती थी कॉलेज से तो मेरी माँ मेरे लिए खाने का ट्रे लगा के बैठी होती थी, मेरी सास मेरा खाना ट्रे में लगा के बैठी होती हैं, चल तू खा और जा सो जा, सुबह से निकली हुई थी। वल्लाह ही ऐसी सासें खुशकिस्मत है, खुद आती वो सास तो क्या करती, तर्जुमा तो याद होना ही कोई नहीं था, मखरज मोटे हो गए, आवाज़ निकलनी कोई नहीं थी, पर उन्होंने उनके बच्चों को और घर को जिम्मेदारियों को लेकर उनको फ्री कर दिया कि बेटा तू पढ़ 2 साल, मैं तेरी काम करती हूँ। देखिए ये मामले बेहतर हो गए ना तो बाकी सारे मामले बेहतर हो जाएंगे। तो ये घर का सुकून सिर्फ शौहर बीवी का नहीं होता, इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब आगे जो शौहर बीवी के लिए दो लफ्ज़ हैं उसको थोड़ा सा टच कर लें, वजाला बैन को मवादत व रहमा, तुम्हारे दरमियान में अलवदूत ने वुद पैदा की, मवद्दत कहते हैं प्यार, इंटीमेसी, जज्बाती ताल्लुक, शौहर बीवी का जो एक जिस्मानी ताल्लुक है उसको ले लीजिए, आई लव यू कहना, एक दूसरे को जो खुशी देते हैं अच्छे अच्छे जुमले बोल के, वो सारे इसमें आते हैं। लेकिन ये रहमा क्या है? रहमा वो है कि जब मोहब्बत लाने वाले असबाब ख़त्म हो जाते हैं, मसलन शादी नई नई हुई, दुबली पतली बड़ी नाजुक सी बच्ची, एक जवान होती हुई लड़की आपको मिल गई, तो कौन ना उससे मोहब्बत करे, उसको देखकर दिल भी खुश, निकाह भी खुश, उससे तस्कीन बढ़ी। और यही वो है जिसको आज पूरे मीडिया ने आई लव यू के साथ मारूफ कर दिया। फ़र्क इतना है कि इस्लाम कहता है शादी के बाद आई लव यू को, हम क्या करते हैं जहाँ शादी होती है वहाँ तो फिल्म ख़त्म हो जाती है, सारी शादी में रोमांस लड़के लड़की का दिखाते हैं, हीरो हीरोइन ही, वो नाच रहे हैं, वो दरख्तों पे कूद रहे हैं, वो बंदर बन के घूम रहे हैं, वो उसके जूड़े में फूल लगा रहे हैं, वो खिड़की में से मुंह दिखा के चाय का कप दे रहे हैं, और एक जालम अब्बा विलन के नाम पे वो हमेशा लड़की का बाप ही होता है, और सारे हॉल वालों की हमदर्दियाँ लड़की के साथ होती हैं जब वो घर से भागती है कि अल्लाह करे अब्बा ना उठें ये भाग जाए, यही देखा ना आपने फिल्मों में, और जहाँ या तो शादी हुई अब्बा मान गए या कुछ हुआ तो फिल्म ख़त्म, या फिर अब्बा नहीं माने तो वो दोनों ने खुदकुशी की और दोनों की रूहें ऊपर गईं और रूहें दिल बनी, कहते हैं यहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ तो मिल गए, ये दिखाते हैं ना फिल्मों में, तो बच्चियाँ भी यही सीखती हैं और बच्चे भी यही सीखते हैं। ये सिर्फ मुबद्दा है, आज देखिए कुछ साल के बाद दिल भर जाता है, मैंने ये भी वेस्टर्न कल्चर में चीज़ नोट किया और लोग खुद शेयर करते हैं, खुद हम एक काउंटर पे खड़े थे और ऐसे ही बात हुई, वो पूछते हैं क्योंकि मेरा लास्ट नेम मेरे हस्बैंड के नेम के साथ नहीं है, मैंने नहीं चेंज किया शादी के बाद, मुझे अपने बाप का नाम इतना प्यारा लगता है कि मैं क्यों छेड़ूं। तो जब वो एक काउंटर पे हम खड़े थे तो मेरे हस्बैंड का लास्ट नेम और था मेरा और था, तो उसको डाउट था कि ये फिर कोई दो और हैं, मैंने कहा ही इज़ माई हस्बैंड, इन्होंने कही चीज़ माई, ओके, और ऐसी बात शुरू हुई तो पता नहीं कितने 12-13 साल हुए थे, तो कहती हो तुम 12 साल से इसके साथ रह रही हो, तो मैंने कहा मेरी अम्मा तो इससे भी ज़्यादा साल से रह रही है एक मर्द के साथ, उनके लिए ये बात बहुत अजीब होती है, और रियली यस दिल नहीं भरा, पता ही अब लगा ये बंदा अच्छा कितना है, ये है रहमा, जब जिस्मानी जज्बाती तकाजे दब जाते हैं, एक औरत आपके बच्चों की माँ बन गई, वो कमर कमरा बन गया, और वो नज़ाकत सख्ती में बदल गई, वो जो प्यार से बोलती थी आइए जान खाना खा ले, वो बच्चों में चीख चीख के वो धाड़ने वाली औरत बन गई है, खाना है तो खा ले नहीं खाना तो ना खाए। औरतों में भी फ़र्क, वो रोज़ नई बेड शीट्स बिछती थी, आप पता चला कि कहना पड़ता है बेगम इसको बदल दो इसमें स्मेल आ रही है, सुबह उठने से पहले कपड़े वो रुमाल तक मैचिंग इस्त्री वाले रखे होते थे जी आपके लिए कपड़े रखे, आप वो बेचारे ढूंढते बेगम एक मोज़ा तो दे दो दूसरा पहन जाए, नीला और पीला एक ही जैसा कुछ नहीं होता, तो अब ये सारे लाड सारी उम्र तो नहीं चलते, तो कहा फिर आप उस पर रहम करो। शादी जितनी पुरानी होती है उतनी पुरसकून हो जाती है, लीता सुकून इलेगा, नई बीवी का तो मिजाज ही नहीं अभी समझ आया होता कि ये अब नाजुक परी रूठ ही ना जाए, इसके आंसू ही ना निकल आए, और बीवियां भी डरती रहती हैं हाय इनको पता नहीं किस बात पे गुस्सा चढ़ गया, वो सारी वक्त ही इस गम में पड़ी रहती है कि मैंने किया क्या है, लेकिन जब आप 20 15 20 साल साथ रहते हैं आपको समझ आई ये बाबा जी ऐसे ही हैं, ये भी ठीक हो जाएंगे। पुरानी बीवी कंफर्टेबल है, जैसे नया कपड़ा पहने प्यारा तो बड़ा लगता है पर चुभता है, कॉन्शियस भी बड़े होते हैं ऐसे ही ना, नई नई शादी में दोनों कॉन्शियस बड़े होते हैं पर चुभ ही रहे होते हैं, और जो पुरानी शादी होती है ना फिर उसमें शुगर भी होनी है आपको, ब्लड प्रेशर भी हाई होना है, और वो बुढ़ा बुढ़ी बैठ के एक दूसरे को दवाइयाँ खिला रहे हैं, आप जवान बीवी खिला सकती है दवाई? आप सोचे ना एक बूढ़ा शख्स है जिसकी अपनी उम्र 60 साल है तो बीवी 50 साल की है, आप कहते हैं 50 साल की अम्मा जी आपको क्या खुश करेंगे, आप ऐसा करें कि दो बीवियाँ ले लें 25 25 साल की, कितने बाबा जी आज आके पूछिएगा अपने बाबों से, कोई नहीं लेगा, वो कह रहन दो जी, वो 25 साल वाली कहती है चलो वॉक पे चलते हैं डार्लिंग, तो बाबा जी के तो गोड़े नहीं उठ रहे, वो तो काफी फर्क है, कैसे चलेगी साथ, वो 50 के अगर उनके घुटनों में दर्द है तो इनकी भी कमर में चुक पड़ चुकी है, ये मवद्दत के बाद रहमत है, फिर रहम खाओ। बस कहते हैं मवद्दत लव 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 रोमांस रोमांस रोमांस, जब तक रहा है ठीक है नहीं तो ख़त्म, इस्लाम कहता है अब मोहब्बत ख़त्म अब रहम शुरू कर दो, अब इस उम्र में ये कहाँ जाएगी, ये तुम्हारे बच्चों की माँ बन के एक और आयरन वूमेन बन गई है, ये अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, देखिए कितना बड़ा बात है, एक मर्द के पास एक औरत सब छोड़ के आती है, आप तो अब पुराना हो गया ना आपका छोड़ा हुआ, लेकिन ये आसान काम नहीं है, आप सोचें वही जो बात है कि तन तशरून पे जो शुरू में की है, जब आप खुद 12 14 साल की थी क्या कीमती था, माँ बाप भाई बहन ये घर नहीं छोड़ूंगी, ये भाई बहन नहीं, मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, भाइयों का रास्ता बहनें देखती हैं, और माँ बाप का घर चाहे कहना चाहिए कच्चा घर भी हो तो वो प्यारा ही लगता है, नहीं छोड़ सकती एक लड़की, किसके लिए छोड़कर आई, आपके लिए तो, आपकी गालियाँ खाने के लिए, आपका गुस्सा देखने के लिए आई है वो लड़की, आप उसको तर तर की बातें सुना इसलिए आई है, ये इस्लाम नहीं है, वह रहमा रहम करो, इतना खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है ना मवद्दत और रहमत का कि मैं हार मानती हूँ कि मैं इसकी खूबसूरती आपको उर्दू में बता सकूँ, कभी आप इसकी अरबी की डिस्क्रिप्शन तो पढ़ें, रहमत की तरह बरसती हुई बारिश है ये, ना वो लड़के हमने दिए अपनी बेटियों को सच्ची जो बात है, और ना हम अपनी बेटियों के लिए ऐसे मर्द ढूंढ सके, और ना हम अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत कर सके जैसी अजवाज थी, जैसी सहाबियात थी, जैसी मोमिनों की माएँ थी, ना वो इमाम रबी की माँ हम बना सके, ना इमाम बुखारी जैसी माँ बना सके, आज के दौर भी ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजमूई तौर पे ऐसे लगता है इस दौर में हम नाकाम हो गए अच्छी बीवियाँ और अच्छे शौहर प्रोड्यूस करने में, और प्रोड्यूसर कौन होते हैं, माँ और बाप, यानी मैं इस वक्त फिर आपको कह रही हूँ कि एक बीवी या एक शौहर होने के नाते शायद को ना सुने, उसमें तो आप हमेशा अपने पर रहम ही खाएंगे, एक माँ और बाप होने के नाते से इस आयत को सुने कि अभी हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, थैला पकड़ाइए बेटे को जाओ ग्रोसरी लेके आओ, ख़राब ले आएगा ना टमाटर ढीले ले आएगा अगली दफ़ा ठीक ले आएगा, हमने बेटों को तो फारिग ही कर दिया, मर्दों को तो फारिग ही कर दिया ग्रोसरी खरीदने से, क्योंकि उसने लानी है तो अच्छी नहीं और बेगम को पसंद नहीं आनी खुद ले आओ, औरत कह लीजिए कि दावत पकानी है उसने 50 लोगों की और कम से कम 5 फेरे लगाने हैं उसने, कभी गोश्त लाना है तो कभी सब्जी तो कभी दाल, ये गलत है माफ़ कीजिए ये गलत है, इसलिए आज की सोसाइटी में बेचैनी है, जब औरत नहीं निकलती थी जो घर में आ जाता था पसंद आता था, अब लेने चली गई तो जो आता है वो पसंद भी नहीं आना, और जो एक चीज़ नहीं लानी शौहर ने उसी पर ही झगड़ा शुरू हो जाना, ना शुक्र बना जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना फ़ी ज़ालिकल आयात लिक़ौम यतफक्करून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है उस कौम के लिए जो तफक्कुर करती है। अब ये तो बात हुई है काम हालात की, अगली आयतों में थोड़े से फितरत से या निज़ाम कायनात से इशारे हैं शोहर बीवी के अच्छे ताल्लुक़ के। आइए देखें, वमिन आयात ही खल्कुस समावाती वल अर्थ, और उसकी निशानियों में से एक निशानी है आसमानों और ज़मीन की तख्लीक। क्या निशानी है, साथ साथ देखते जाते हैं, आसमान ऊपर है ज़मीन नीचे। शोहर बीवी के ताल्लुक में मर्द आसमान बने, बीवी ज़मीन बने, बस ये इशारा लिख लें। और आसमान से बारिश आती है, बारिश से रिस्क बरसता है, वही मिजाज इधर है। हर एंगल से शौहर बीवी का फितरी ताल्लुक आसमान और ज़मीन वाला है, मर्द ऊपर के कामों में, ज़मीन की तरह बिछी हुई औरत। अल्लाह ने इसको बेहतरीन तरीके से बना दिया। फिर वख्तिलाफ़ अलसिनतिकुम, और इख्तलाफ है तुम्हारी ज़ुबानों में, वलवानिकुम और तुम्हारे रंगों में, इन नफीज़ालिका लायात लिलआलमीन, इसमें अलबत्ता निशानी है जहान वालों के लिए। ये आखिरी लफ्ज़ भी गौर का तलब है, मवद्दत और रहमत की बात थी तो ली कौम का लफ्ज़ आया, कौम के लिए, हर कौम का अपना एक मिजाज होता है। यहाँ बात हुई रंगों और ज़ुबानों की, लैंग्वेजेस की, तो आलमीन का लफ्ज़ आया। इसमें क्या गौर व फिक्र है, आप देखिए कि बाज़ दफ़ा जब शादियाँ होती हैं तो ज़ुबान ही फ़र्क होती है एक दूसरे की। एक अरब है तो एक अजम है, एक उर्दू बोलता है तो एक इंग्लिश बोलता है, एक फ्रेंच बोलता है तो दूसरा नॉर्वेजियन बोलता है। अब क्या करें, कहा मोहब्बत की ज़ुबान सबको समझ आती है, जैसे माँ गूंगे बच्चे के इशारे भी समझ जाती है ना, तो शौहर बीवी की ज़ुबान ना भी मिले तो वह एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत की ज़ुबान से बातें कर लेते हैं। एक ऐसी सिस्टर बचपन से देखी हुई याद आती हैं, जो गूंगी थी, नहीं बोल पाती थी, पैदाइशी होंगी, तो घर के किसी ड्राइवर या किसी भी करीब के शख्स से माँ बाप ने शादी कर दी उनकी। तो जब हम उनके करीब थे तो वो बच्चों के माँ बाप थे, तो जी रहे थे, तो उसका शौहर कहता था कि ये आप लोगों के लिए गूंगी है, मेरे लिए गूंगी नहीं है। यानी एक तो इशारा था कि ये इशारों में और गुस्सा करके लड़ लुड़ लेती है मेरे साथ, लेकिन दूसरी तरफ उसका इशारा भी समझता था। तो इशारा समझो, अच्छी बीवी और अच्छा शौहर इशारा समझते हैं। उनके लिए चीखना, शाउट करना, एक दूसरे को बताना ये ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मोहब्बत फातह आलम। और रंगों का इख्तलाफ देख लीजिए, आप देखिए कि अफ्रीकी ब्रदर हो और सीरियन सिस्टर हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, लेकिन निभ जाती है। लेकिन एक ख़ानदान, एक खाला फुफो के या फुफो मामू के या खाला के चचा के जो करीबी रिश्ते हैं वहाँ भी नहीं निभती। तो जब रिश्ते किए जाए ना तो रंगों को ना देखें, ये भी एक अल्लाह की शान है। और जहाँ ज़ुबानों की बात है, आपको तो दुनिया में कहते हैं 4,000 से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, सिर्फ अरबी ज़ुबान के शायद 24 एक्सेंट हैं इंग्लिश के, जो सारी दुनिया में बोली जाती है। तो रंग के और आवाज़ और ज़ुबान को बुनियाद नहीं बना सकते आप शौहर बीवी के ताल्लुक में, ये ताल्लुकात होते हैं। यानी आपसे मुझसे कोई क्या, अपनी बेटी की शादी किसी सोमाली ब्रदर से कर दो, किसी अफ्रीकी सिस्टर को ले आओ अपने घर में बहू बनाकर, फिर देखिए ज़रा माओं की जो बहें तनती हैं, ऐसे लगेगा सारी मेहनत ही ज़ाया हो गई, ये भी बुरी बात है। इतने अच्छे अच्छे ब्रदर्स आपको हर शहर में मिलेंगे जो रिवर्ट्स हैं, लेकिन लड़कियों के बाप उनके साथ शादियां नहीं करते अपनी बेटियों की। और कितनी अच्छी बच्चियां जो मुसलमान हो चुकी हैं, अच्छी खूबसूरत भी, लड़कों की माएँ उनको बहू नहीं बना के लाती, कहती यही रह गई थी मेरे बेटे के लिए। ये फ़र्क ख़त्म कर दें। अल्लाह सुब्हान तआला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़कर आपको मुझे दिखा दिया कि इससे क्रिएटिविटी होती है। फिर आगे देखिए, वमिन आयात ही मनामुकुम बिल्लैली वन्नहार, और उसकी निशानियों में से हैं तुम्हारा रात और दिन में सोना, वब्तिगाउकुम फी मिन फ़दली ही, और तुम्हारा उसके फ़जल को तलाश करना। यानी उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारे इसके फ़जल को तलाश करना, इन नफ़ी ज़ालिका लआयातिल्लि कौमी यस्माउन, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। देखिए, पहले ली कौम था, फिर लिल आलमीन हुआ, अब ली कौमी यस्माउन। यहाँ रात का सोना, दिन का सोना और फजल तलाश करना, ये क्या इशारा है शौहर बीवी के ताल्लुक में, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि हम तफसीर तो कर ही नहीं रहे। फजल से मुराद है रिज़्क की तलाश, मर्द का ये जिम्मा है। मर्द दिन में फजल तलाश करे ढूंढे, और रात की नींद बीवी के शौहर के सुकून और इत्मीनान और उसके लिए अवेलेबल होने का इश्तियार है। क्या पता चला कि शौहर बीवी जब अपने अपने जिम्मेदारियों को अदा करते हैं तो घर जन्नत होते हैं। यदि आप लिख लें कि ये सिफात हैं होम को हाउस में बदलने वाली, होम स्वीट होम, आप मानिए कि ना मानिए, मानिए कि ना मानिए, लेकिन ये सच है। दिल बीवी के साथ ही लगता है। घर आते ही सबसे पहले किसका पूछते हैं? बेगम या वो डार्लिंग का नहीं पूछते, कहते हैं अम्मा किधर है। भाई अम्मा जी को क्या कहना है, जरा थोड़ा सा गुस्सा करना था, अम्मा किधर है। बुढ़ा भी आता है ना घर में तो वो बुढ़ी बेगम को ढूंढ रहा होता है, और जवान भी आता है। बहुत सारी औरतों को ये बड़ा बुरा लगता है, मेरी मियाँ कहते जब मैं आऊं तो तुम घर में हो। सुना है आपने? आप में से भी किसी का इशू होगा, बस जब मैं घर में हूँ तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे इर्द गिर्द रहो। अच्छा, औरतें इसको बुरा समझती हैं, पाबंदी है, रुकावट है, ये वो। तो मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करें, मैं ये दुआ करूँ आपके मियाँ के, तू मुझे शक्ल ना दिखा, मैं घर में आऊँ ना तो तू बाहर चली जाया कर, फिर आप खुश हैं। खुशी मनाइए अगर आपके शौहर ये कहते हैं आपसे, लेकिन आप उसी मोहब्बत में उनको राजी रखें और अपना हक भी ले लें। तो नेमतों को रहमत को जहमत नहीं बनाते। तो यहाँ यही इशारा किया गया कि दोनों अपनी चीज़ों को निभाएं। कायनात में अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ रख के दिखा दिया। हर चीज़ का अपना वक्त है, हर चीज़ का अपना काम है। हर वक्त रोमांस भी नहीं चलेगा और हर वक्त कमाना भी नहीं चलेगा। इसमें इशारा है मर्दों को भी कि कमाने के लिए भी ज़रा वक्त का इस्तेमाल करो। ये नहीं कह दिया जी रात तक बाहर बैठे हैं, जी बेगम इंतज़ार करके सूख रही, वो जी काम कर रहे थे, ये भी नहीं ठीक होता। बाज़ मर्दों का तो सारा दिन जो है वो कमाना है, या खाली वक्त है तो दोस्तों के साथ आधी आधी रात तक बाहर रहना, ये भी पसंदीदा नहीं। बिल्लैल व नहार, यानी अपने टाइम को मैनेज करो, और घर और होटल में फ़र्क रखो। ये नहीं कि घर तब बहुत जब आँखें आधी बंद हो चुकी हैं और नींद के साथ। कई घरों में मसला, बीवियाँ बेचारी सारा सारा दिन काम करती हैं, फिर जू इंतज़ार करती हैं करती हैं, फिर साहब आते हैं, और कई आधी आधी रात को फिर उठ के उनके लिए रोटी बना रही है। तो ज़िंदगी को डिसिप्लिन करो, हर चीज़ को उसके वक्त पे कीजिए। चलिए अगली निशानी पे भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। वमिन आयाति युरीकुमुल बर्क खौफम व तमाम व युनज़्ज़िलु मिनस्समाई मान फयुहयी बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून। और उसकी निशानियों में से यह है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, खौफ के साथ भी तमा के साथ भी। देखिए दो चीज़ें हैं, बिजली चमकती है ना तो रोशनी हो जाती है अंधेरों में, लेकिन साथ थोड़ा सा खौफ भी आता है, और उम्मीद क्या लग जाती है कि बारिश होगी। इसीलिए कहा और आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। ये बिजली चमक ये क्या है? कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। देखिए कभी शौहर अगर चीखें, गुस्सा करें, करना नहीं चाहिए लेकिन कर लें, तो बिजली के साथ चमक भी तो है ना, फ़ायदा भी तो है, तो तभी चीख रहे हैं ना, ना हो फिर क्या होगा। वो हमारे कल्चर में कहते हैं कि शौहर की तो जूती भी घर में पड़ी हो तो उससे भी औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। बस लोग गुस्से में तेज़ होते हैं और मिजाज तेज़ है और ज़ुबान की तेज़ी है, तो मुंह पे वो लफ्ज़ ले आते हैं कि फिर ताल्लुक़ टूट जाता है, फिर उनको बाद में एहसास होता है चलो ना होने से तो बेहतर थी। तो ज़िंदगी में गरज चमक रहेगी, लेकिन फिर बारिश भी तो होती है। क्या पता चला कि हालात एक जैसे नहीं रहेंगे। देखिए आप एक ग्लास है उसको रख दें, 10 साल इधर पड़ा रहे कोई नहीं छेड़ेगा, बेजान है। लेकिन एक फूल रख दीजिए फ्रेश, चंद दिन बाद मुरझाएगा, उसको पानी भी देना पड़ता है। तो इंसानों के अंदर जज्बात होते हैं, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इससे ये भी इशारा मिलता है लिकौमी या अकिलून की बात है कि शौहर बीवी के ताल्लुक़ को निभाने के लिए अक़ल की भी ज़रूरत होती है। बेअक़ल लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और ख़ुद भी बुरे बनते हैं और दूसरों को भी बुरा बनाते हैं। और मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ इस मामले में, बेवकूफ़ लड़कियां अच्छे शौहरों को भी बदनाम कर देती हैं। यानी शादी हुई, लाडली थी, अक़ल की कमी थी, अच्छा मर्द मिला, इतनी उसकी बुराइयां करेंगी माँ बाप को भी उससे मुतफ़र कर देंगी। और अक़लमंद औरत बिल्कुल वाजबी सा शौहर मिलता है ना, तो उसको भी सरताज कह के सरकताज बना लेती हैं, वो एक जुमला भी कुछ इस तरह का पढ़ा था मैंने कि अक्लमंद औरत जो होती है वो अपने शौहर को पहले आका बनाती है, फिर आका की बीवी बन के जीती है, और बेवकूफ़ औरत जो होती है ना वो अपने शौहर को पहले गुलाम बनाती है फिर गुलाम की बीवी बन के जीती है। तो आप बताइए किसकी बीवी बनना अच्छा है? तो अक्ल के साथ अपने साथी अपने पार्टनर की इज्जत करनी और करानी चाहिए। फिर अगली निशानी, व मिन आयाती हन अन तकूम अस्समाउ वल अर्दु बि अम्रिही सुम्मा इज़ा दआकुम दावतम मिनल अर्दी इज़ा अंतुम तखरुजून। और इसकी निशानियों में से एक ये है कि आसमान और ज़मीन इसके हुक्म से कायम है, फिर जूं ही कि उसने तुम्हें ज़मीन से पुकारा बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे। यहाँ देखिए अब निशानी क्या है कि आसमान और ज़मीन खड़े हैं अल्लाह के हुक्म से। जिस तरह आसमान और ज़मीन अल्लाह के हुक्म से खड़े हैं ना, लिख लें शौहर और बीवी का ताल्लुक निभता ही सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। खिलाफ़े तबीयत, खिलाफ़े तबा, आदतों में फ़र्क, माहौल में फ़र्क होने के बावजूद अगर दो लोग सारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजार सकते हैं ना, तो शौहर और बीवी ही हैं। मानते हैं आप इस बात को? यानी ये वाकई अल्लाह की एक निशानी है, एक छत के नीचे दो मुख्तलिफ लोगों का ज़िंदगी गुजार देना, ये अल्लाह ना करे तो कभी नहीं होता। सगे बहन भाई नहीं रह सकते, शौहर बीवी कैसे रह पाते हैं? ये अल्लाह की शान है। और साथ ही इसमें एक इशारा भी है कि क़यामत के दिन जब पुकार लगेगी तो तुम निकल आओगे ना, अल्लाह के आगे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं करोगे। तो ज़िंदगी में भी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए डिसाइड कर दिया उसी से राज़ी रहो। और वलहू मन फिस समावाति वल अर्दी कुल्लु लहू क़ानितून वहु अल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ा सुम्मा युईदुहू वहु अहवनु अलैही वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीज़ुल हकीम। और उसी का है जो कुछ आसमानों ज़मीन में है, जहाँ आसमानों ज़मीन में जो हैं सब उसी के बंदे हैं, सब उसी के ताबे फरमा हैं। वही है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर इसको दोहराएगा इयादा करेगा, और ये इसके लिए आसान तर है। आसमानों ज़मीन में इसकी सिफत सबसे बरतर है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। क्या बना कि तुम अल्लाह के बंदे बनो, आजिज़ी से जियो, अल्लाह तुम्हारे घरों में भी सुकून कर देगा। क्या सारे सबक से जो बात समझ आती है, शौहर होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, हकूक खुद ही मिल जाएंगे, और बीवी होने के नाते भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, हकूक मिल जाएंगे। देखिए इस्लाम क्या सिखा रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। और आज का कल्चर क्या सिखाता है, हकूक मांगो, विमेन राइट्स, लेबर राइट्स, किड्स राइट्स, दिस एंड दैट। तो सारी बात का खुलासा क्या है, अगर आप और मैं सारी चीज़ को देखें तो शौहर और बीवी गाड़ी के दो पहिए, दोनों के साथ चलने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से घर बनते हैं। अगर आप ये कहते हैं ना सिर्फ औरत घर को जन्नत बना देगी तो गलत है, और अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ शौहर ही घर के अच्छे बुरे के जिम्मेदार है, ये भी गलत है। आपको हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, आम हालात में तो यही है। बट एक जो हल्का सा इशारा आपको मुझे एज अ बीवी मिल रहा है वो क्या है कि अगर हालात में बिगाड़ हो जाए, यानी दूसरा फरीक नहीं है उस लेवल का, तो फिर तुम सब्र कर जाओ, फिर औरत का जिम्मा है। क्या पता चला खुलासा, शौहर और बीवी मिलकर घर बनाते हैं लेकिन घर को बिगड़ने से बचाने में औरत का किरदार ज़्यादा है। सब्र, शुक्र, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना, फॉरगिव फॉरगेट, माफ़ कर देना, ये औरत के लिए निस्बतन आसान है, और अल्लाह ने औरत के मिजाज में, उसके खमीर में ये सब कुछ रखा है। मल्टी टास्किंग होती है वो औरत तो काम चला लेती है,